हरे कृष्णा। तो ये हनुमान जी की भावना थी। सारी अयोध्या हंस रही है, लेकिन वो सोच रहे हैं मैं उनकी परवाह नहीं करता, प्रभु क्या सोच रहे हैं। अगर वो प्रसन्न हो रहे हैं तो मैं बिना संकोच सिंदूर लगाकर रास्ते में बैठूंगा। हमको तो केवल नाचना है। हाँ, आपको सिंदूर लगाने का कोई क्या कहते हैं उसको बताना, कोई बता नहीं रहे सिंदूर लगा के बैठ जाओ सब लोग। बोले बम्बई से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के संबंधित लोग, सभी 95 लोग अभी रामेश्वर के रास्ते में सिंदूर लगाकर बैठने वाले हैं। ऐसा तो कोई प्लान नहीं है अपना। हम लोग को प्लान एक ही है, जब कीर्तन होगा तो आपको उसमें सहभाग लेना है, हृदय से पुकारना है। क्योंकि कीर्तन में जब पुकारते हैं तो सभी लोगों की पुकार की जो सहायता है वो हमारी पुकार को मिलती है। हमारी पुकार जो है वो उसको सपोर्ट मिलता है सभी लोगों की पुकार का, और वो पुकार जल्द भगवान के पास पहुंचती है। जप में और कीर्तन में यह फर्क है। जप जो है वो केवल हमारी पुकार है, केवल हमारी पुकार, कितनी शक्ति है उसके अंदर वहीं तक पहुंचेगी वो। लेकिन कीर्तन में सबकी पुकार का लाभ मिलता है, इसलिए कीर्तन में नंबर वन सबको पुकारना चाहिए हृदय से। और ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं सबका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनकी पुकार मेरी पुकार को सपोर्ट कर रही है। यज्ञाय संकीर्तनाय प्रायः यजंती ही सुमेधसा हो, भागवत में लिखा है। बुद्धिमान लोग वही है सुमेधसा, जो इस कलयुग में इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं, बिना संकोच में संकीर्तन में भाग लेते हैं, भगवान के नाम को पुकारते हैं। उन व्यक्तियों को सुखदेव जी महाराज, सूत गोस्वामी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वो लोग बुद्धिमान हैं। दुनियादारी के लोग प्रमाण पत्र देंगे आपको या हंसेंगे, हु केयर्स। अगर सुखदेव गोस्वामी आपको बोल रहे हैं कि आप बुद्धिमान हैं, तो आपको जरूर गर्व से उसमें भाग लेना चाहिए। हाँ, संगो पंगास्त्र पार्षदम, भगवान अपने नाम के भक्तों के साथ में ये संकीर्तन पद्धति को प्रचलित किए हुए हैं, सब लोग कर सकते हैं उसको। हाँ, कोई बात नहीं। एनीवेज, हम लोग धनुषकोटि के महात्म्य का वर्णन आगे बढ़ाते हैं। उसकी एक कथा ऐसी आती है कि यहाँ पर मदुराई में हम जाएंगे, मदुराई में बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, राजवंश था, चोला डायनेस्टी, नहीं पंड्या डायनेस्टी, सॉरी, तीन थे, चोला, चेरा और पंड्या, ये तीन राजवंश थे। और वो त्रिवेंद्रम, मदुराई और शायद श्रीरंगम, इन तीन जगह पर विराजमान थे। तो मदुराई के जो राजा थे सुंदर पंड्या, राजा सुंदर पंड्या, ये बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। उनको पुत्र या कन्या नहीं हो रही थी, बड़े श्रेष्ठ भगवान के भक्त थे ये। पीछे लोग सुन रहे कथा मेरी, एकदम पीछे, आर यू हियरिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? इफ यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड यू कम इन फ्रंट। हाँ, तो ये गंधमादन पर्वत पर जहां पर प्रभु रामचंद्र पहुंचे ना अगस्त्य मुनि को मिलने के लिए, वहीं पर ये आए। उन्होंने सेतु में स्नान किया, इसका मतलब ये कलयुग की शुरुआत की बात है। तो वहां पर भगवान की प्रिय सखी लक्ष्मी देवी एक गरीब बालिका के रूप में प्रकट हो गई। जैसे देखा तो उन्होंने उनको ले लिया अपनी पुत्री के रूप में, और घर जाकर उनकी लालन पालन करना शुरू किया मदुराई में। ये जो लक्ष्मी पुत्री बनकर आई थी, उनकी कन्या बनकर आई थी, ये हमेशा अपने पिताजी को विष्णु भगवान की सेवा करने में सहायता करती थी, खास करके तुलसी के फूलों को, तुलसी के पत्तों को निकालकर सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाकर भगवान को अर्पण करने में सहायता करती थी। फुल्ली एंगेज्ड इन सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। तो एक दिन जब ये बगीचे में फूल बिन रही थी, तो विष्णु भगवान को उनका विरह हुआ लक्ष्मी देवी का, तो वहां पर वो ब्राह्मण बनकर आए और उसका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। विष्णु ने जैसे ही ब्राह्मण बनकर आकर हाथ पकड़ा, तो ये कन्या ने शोर मचाया, बचाओ बचाओ, कोई मेरी छेड़छाड़ कर रहा है, कोई मेरी छेड़छाड़ कर रहा है। तो पिता को आवाज सुनाई पड़ी, तुरंत शस्त्र लेकर आए वहां पर, वो ब्राह्मण को पकड़कर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और चेन से बांध दिया उनको अरेस्ट करके। तो रात को स्वप्न में विष्णु भगवान आए, पहले ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, ब्राह्मण का रूपांतर विष्णु में हुआ। उसके बाद में उनकी कन्या आई और वो लक्ष्मी में रूपांतरित हुई। और ब्राह्मण ने बताया, मतलब विष्णु ने बताया कि मैं विष्णु हूँ और तुम्हारी कन्या मेरी पत्नी है, विष्णु लक्ष्मी देवी है। तो सपने में से उठ गए, जोर धड़ के मारे, सीधे भागे जेल के अंदर और जाके प्रभु के चरणों में गिरे और चेन में निकाल दिया पूरा जो बांध के रखा था। बोले प्रभु जी माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बड़ा आनंद आया आपके द्वारा बंधे जाने के लिए। हाँ, तो प्रभु ने उन्होंने प्रभु की बहुत माफ़ी मांगी और प्रभु ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा अपराध किया आपका। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आप सेतु माधव तीर्थ में स्नान कर लेना, आप सब पाप से मुक्त हो जाओगे। तो राजा सुंदर पंड्या ने सेतु धनुषकोटी में स्नान किया। तो वहाँ पर और एक सब कुंड भी है, सेतु माधव कुंड, धनुषकोटी का ही भाग है वो। हाँ, वहाँ पर सेतु माधव की मूर्ति अभी भी विराजमान है और उनको उस लीला की याद में चैन से बांध के रखा है, राजा पंड्या ने उनको बांध के रखा था। तो ऐसे सुंदर पंड्या महाराज सेतु माधव कुंड में स्नान करके अपने पाप से मुक्त हो गए। दूसरी कथा आती है कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब निर्माण किया तो कई ऋषियों को शक्ति दिया निर्माण करने का। सबसे प्रधान प्रजापति थे कश्यप मुनि और कश्यप मुनि की कई पत्नियां थी, दीति, अदिति, कद्रु, विनीता, और एक एक से एक एक वंश निर्माण हुआ है। जैसे दीति से देवता दीति से दैत्य जन्म हो गए हैं, दानु से दानव जन्म हो गए हैं और अदिति से देवता लोग का जन्म हुआ है, कद्रु से सांपों का जन्म हुआ है और विनीता से गरुड़ का जन्म हुआ है। तो कद्रु और विनीता एक बार, ये दोनों देयर को वाइज ना, सौतन है दूसरे की, एक बार बैठ के ऐसे बहस कर रहे थे कि इंद्र का जो घोड़ा है उच्चैःश्रवा, समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था वो, जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन से, क्षीर सागर के मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उसमें से एक रत्न है घोड़ा, जो इंद्र का घोड़ा बना, उच्चैःश्रवा जो इंद्र को दिया गया। तो इनकी बहस हुई कि इस घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली है। अभी टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर सफेद होगी तो, कद्रु कहती है सफेद होगी तो मैं तुम्हारे दासी बनूंगी, मेरा कहना है काली है। विनीता कहती है कि नहीं, उच्चैःश्रवा घोड़े की पूंछ जो है वो गोरे रंग की है। तो वो कहती है अगर वो काली होगी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, और कद्रु कहती है अगर वो गोरी होगी तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। मतलब जो हार जाएगी पार्टी उसको पहली पार्टी की दासी बनना है, अपने पूरे कुल के साथ बच्चों के साथ में इनकी सेवा करनी है नौकर बन के। तो कद्रु ने क्या किया, अपने सांपों को भेज दिया उधर इंद्रलोक में और कहा कि तुम छाया कर देना उसके ऊपर, अंधेरा कर देना ताकि दूर से वो काली नजर आए। पता चलता कि मैंने गलती किया है तो उस गोरी पूछे उसको, मैंने तो काली बोल दिया है। तो सांपों को बोलकर वो अंधेरा करती है और ये चाहते हैं इंद्रलोक में, तो देखते हैं दूर से तो काली दिखाई पड़ती। तो वो कहते हैं विनीता अभी आपको गरुड़ के साथ मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मतलब क्या करते हैं, ओपन चीटिंग है ना। तो कई दिन तक सेवा करते हैं, सेविका बन दासी बनकर। तो गरुड़ जी कहते हैं अरे अभी कैसे मुक्त होना है इनसे। तो राक्षसों को पूछते हैं, सांपों को पूछते हैं कि अभी इससे मुक्त कैसे होना है। तो वो सांप भी बहुत चालाक होते हैं, वो कहते हैं कि आप ना इंद्र से जाकर अमृत लेके आना, समुद्र मंथन में उनको अमृत प्राप्त हुआ था, हमको विष प्राप्त हुआ। आप अगर अमृत लेके आओगे हमारे लिए तो ये सेवा से हम मुक्त कर दें हमको। तो गरुड़ ने क्या किया, देवताओं से युद्ध किया और अमृत को जीत लिया उसने। तो जब जीत के लेके आए इनको देने के लिए, तो गरुड़ ने कहा चलो स्नान कर लो, सब लोग स्नान करके अमृत प्राप्त करने को आ जाओ। उनको दे दिया, उन्होंने किनारे पर रख दिया और स्नान करने चले गए। उतने में इंद्र आ गए और अमृत का घड़ा लेकर भाग गए। और सांप लोग बाहर आए तो सेवा से मुक्त हो गए थे। तो ये सब बात जो है वो कश्यप मुनि को मालूम पड़ी, उन्हें कद्रु को शाप दे दिया कि तुम बड़ी चीटिंग हो, बड़ी चीटर हो तुम। तो समझ गया कि मेरे पति का क्रोध मतलब बहुत भयंकर चीज़ है। तो कद्रु ने शरणागति स्वीकार की पत्नी की, माफ़ करो पति की, मुझे माफ़ करो, मैं इस पाप से मुक्त हूँ, मैंने आपकी मतलब मेरे सौतन से चीटिंग किया है। तो उसके नम्रता को फिर देखकर शांत हो गए कश्यप मुनि और उन्होंने कहा कि तुम सेतु माधव कुंड में स्नान करना, धनुष कोटि में स्नान करना। तो यहाँ पर कद्रु ने आकर, जो सर्पों की माता है, कश्यप की पत्नी है, यहाँ पर आकर स्नान किया है धनुषकोटि पे, और वो इस पाप से मुक्त हो गई है। ऐसे कहा गया है कि अगर आपके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि नहीं है बताओ। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो मैं कहूँगा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि हमारे अंदर चार दोष होते हैं। एक होता है अपने आप को शरीर मानना, एक दंबर का दोष है। सेकेंड दोष है टू चीट अदर्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी। चार दोष है उसके अंदर, और मुझे भी चारों याद नहीं आ रहे, मैं आपको कल बताऊंगा जो उसके। लेकिन एक प्रोपेंसिटी है चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो हर जीव के अंदर है जो देह धारण करता है, खास करके मनुष्य जीव। तो अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो हमारे अंदर छुपा हुआ है वो दोष। तो अगर आप धनुषकोटि में स्नान करेंगे तो आपका चीटिंग प्रोपेंसिटी नष्ट हो जाएगा। जरूर स्नान करना, कल आपको जाना है वहाँ पर। ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब याद करके आपको कल स्नान करना है वहाँ पर। हाँ ओके, तो सेतु तीर्थ में फिर कद्रु ने स्नान किया और वो पाप से मुक्त हो गई। हनुमान का मैंने बता दिया, हनुमान जी का तीर्थ वहाँ पर है ही, हनुमान तीर्थ बना, जो वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए थे ना। फिर वहाँ पर एक विल्लुरिणी तीर्थ है, जब राम भगवान ने वहाँ पर बाण मारा, ऐसा हुआ कि राम भगवान सभी लोगों को लेकर जा रहे थे पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या में। तो पुष्पक विमान पर सीता देवी को प्यास लगी, तो उन्होंने कहा प्रभु जल की व्यवस्था करो, प्यास लग रही है। तो वहाँ पर ऐसे ने बोला ए जाओ जल लेके आओ। वो धनुधारी वीर है भगवान, धनुष निकाला, बाण चलाया और समुद्र के अंदर बाण मारा उन्होंने, खारे पानी के समुद्र के अंदर बाण मारा और वहां से मीठा जल की धार निकली और वो जल सीता देवी ने पिया, फिर हनुमान ने पिया, फिर सुग्रीव जांबुवान सब लोग ने पिया, सब लोग संतुष्ट हो गए। तो उसका नाम है विल्लुरिणी तीर्थ, वाटर स्प्रिंग है। सीता, सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, विभीषण सबने वो मीठा जल पिया, और कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से, वो कुंड भी धनुषकोटि में ही है, सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और आध्यात्मिक परफेक्शन प्राप्त होता है। ऑल दी स्पिरिचुअल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड एंड यू विल अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन। ओके, फिर एक तीर्थ लक्ष्मण ने बनाया है, लक्ष्मण तीर्थ। वहाँ पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। एक तीर्थ स्वयं राम ने अलग से बनाया है, राम तीर्थ, गंधमादन पर्वत पर, वो भी वहीं पर है। और अग्नि के बारे में आपको बता दिया ऑलरेडी। एक कथा और आती है पुरावसु नाम के व्यक्ति की। हाँ, ये पुरावसु व्यक्ति बड़ा सिद्ध था, उसके पिताजी बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो एक दिन वो जब अपने घर पे आया तो देखा कि एक शेर सो रहा है, तो उसने अपना मंत्र बोलकर दंड प्रकट किया और दंड से उस शेर पर प्रहार किया। लेकिन वो शेर नहीं था, वो उसके पिताजी थे महात्मा, जो शेर का चर्म जो है व्याघ्राजीन कहते ना उसको, टाइगर स्किन, उसको ओढ़कर सोए हुए थे। तो उसको पता नहीं था, उसको लगा शेर सो रहा है। जब उसने मंत्र बोलकर दंड चलाया तो पिता की हत्या हो गई। तो सब साधु वहाँ इकट्ठा हो गया, अरे कैसे तुम साधु हो, पिता की हत्या करते हो, पिता के हत्यारे बन गए, कितना महान पाप किया तुमने। वो ऋषि भी थे, ब्राह्मण थे और महात्मा थे वो, तो बड़े दुखी हो गए और क्या करें। तो अगस्त्य मुनि के पास में गए, तो अगस्त्य मुनि ने उनको कहा सेतु तीर्थ में जाकर स्नान करना और उसके बाद में रामनाथ जी, रामेश्वर महादेव का दर्शन करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, तो पिता की हत्या से, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने जैसे ही ये सुना तो तुरंत उन्होंने स्नान किया धनुषकोटि पे और रामेश्वर भगवान की पूजा की। फिर आकाशवाणी हुई कि अभी आप पिता के हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। तो वहाँ पर स्नान करने से कभी ब्राह्मण का आपने अपराध किया होगा, ब्राह्मण की हत्या ही करने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण को बुरा बोलना, उनका दिल दुखाना, उनका अपराध करना भी वैसा ही पावरफुल है, ब्रह्म हत्या के बराबर है। ऐसा कहते हैं कि टू स्पीक हार्श वर्ड्स इज ऑल्सो किलिंग, इज ऑल्सो वायलेंस। किसी के साथ में कठोर वचन बोलना, बहुत तीखे वचन, दर्दनाक वचन बोलना भी हत्या करने के बराबर है, इट इज वायलेंस, हिंसा है वो। तो ऐसे ब्रह्म हत्या अगर आपने कभी गलती से की होगी तो वहां पर स्नान करने से उससे मुक्त हो जाओगे आप। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था दुराचारी ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण जन्म लेने के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण कर्म करना जरूरी है। तो एक ऐसे ब्राह्मण का बालक था, कभी ब्राह्म कर्म नहीं किया उसने, हमेशा पाप कर्म ही किए। तो इसके वजह से उसको एक भूत ने घेर लिया, झपट लिया उसको। सावधान रहना आप लोग, अगर आप भी पाप के कर्म करते हो तो आपको भूत झपट ले सकता है। यू कैन बी हॉन्टेड बाय अ घोस्ट इफ़ यू डू सिनफुल एक्टिविटीज। तो एक दिन वो भूत जो है उसको यहाँ पर लेके आया अपने हॉन्टिंग के स्पेल में, और उसने धक्का देकर उसको धनुषकोटि में गिरा दिया। जैसे धनुषकोटि में गिर गया, वो भूत भागने लगा उससे, वापस पकड़ नहीं पाया उसको भूत ने। और ये भी एकदम उसने अनुभूति किया, ऐसे एकदम कि एकदम फ्री हो गया किसी के प्रभाव से। तो उस समय जब उसने भूत से मुक्ति प्राप्त की और देखा कि भूत भाग रहा है, तो वहां पर दत्तात्रेय मुनि के आश्रम में गए। वो दत्तात्रेय मुनि ने कहा, क्योंकि तुमने जहां पर भूत ने तुमको धक्का दिया वो सेतु तीर्थ था, प्रभु रामचंद्र ने बनाया हुआ, और वहां पर स्नान करने से आप भूत के प्रभाव से मुक्त हो गए हो, यहां तक कि अभी आपकी मति शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, सारे पाप विचार आपके नष्ट हो गए हैं, अभी इसके आगे का जीवन आपका भक्तिमय होगा। और क्योंकि तुमको जल में ढकेलने के समय उस भूत का भी जल से स्पर्श हुआ, इसलिए उसका भी उद्धार होगा, आप दोनों वैकुंठ पहुंचोगे। ऐसे आकाशवाणी दत्तात्रेय मुनि ने की। तो इस प्रकार से पुरावसु की कथा हो गई, दुराचार्य ब्राह्मण की हो गई, बिंदुरणी तीर्थ हो गया, लक्ष्मण तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सेतु माधव तीर्थ भी हो गया, कद्रू की कथा भी हो गई, भगवान राम का गौरव भी हो गया। तो ये जो रामेश्वर धाम है, इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर भेंट दिया हुआ है। स्वयं कृष्ण भगवान जब भक्त बनकर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु बनकर, तो जब वो जगन्नाथपुरी में थे तब उन्होंने बताया कि मुझे रामेश्वर में जाकर धनुषकोटि में स्नान करना है, इसलिए मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को ये कारण बताया था कि वाई आई एम गोइंग टू साउथ इंडिया, द सोल पर्पज, ऑफकोर्स देर आर मेनी पर्पजेस, द रीजन दैट ही टोल्ड सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज दिस, दैन मुझे जाकर धनुषकोटि में स्नान करना है। तो इस तरह से सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु गंधमादन पर्वत पर गए, जहाँ पर अगस्त्य मुनि का आश्रम है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने विश्राम किया था कुछ समय के लिए, डिस्कशन किया था अगस्त्य मुनि के साथ में, उनके आदेश पर रामेश्वर को स्थापन करने का निर्णय लिया था। उस जगह पर चैतन्य महाप्रभु पहले गए, उसके बाद वो धनुषकोटि आए और धनुषकोटि में उन्होंने स्नान किया। धनुषकोटि के आने के बाद, स्नान करने के बाद, वो अग्नि तीर्थ में आए, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया, और उसके बाद में उन्होंने 22 जो तीर्थ हैं कुएँ उसके अंदर स्नान किया, और उसके अंदर उसके बाद में रामेश्वर शंकर भगवान का दर्शन किया, उनकी पूजा की। तो इस तरह से ये जो अग्नि तीर्थ है, धनुषकोटि है, फिर राम सीता विभीषण जैसे महात्माओं भगवान ने स्नान किया है, स्वयं यहाँ पर भगवान ने स्नान किया, चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने इन कुओं में स्नान किया जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। कितनी भाग्य की बात है, जहाँ भगवान ने स्नान करके इस जल को, तीर्थों को स्वयं स्नान करके पुनीत कर दिया है, वहाँ पर हम लोग जाकर स्नान करने वाले हैं। तो इसमें क्या कहते हैं उसको, सिंगल डबल ट्रिपल एंड अनलिमिटेड बेनिफिट इज देयर फॉर अस, बिकॉज नॉट ओनली द धाम अपने आप में पाप को मुक्त करने के लिए शक्तिशाली है, लेकिन स्वयं भगवान ने अपने दो रूपों में आकर यहाँ पर स्नान किया है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में और प्रभु रामचंद्र के रूप में। तो ये जो प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु का यहाँ का निवास है, उन्होंने यहाँ पर रामेश्वर के मंदिर में बहुत धूमधाम से कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका नृत्य प्रेममय संकीर्तन देखकर सारे भक्त भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से अश्रु बहने लगे, और उनको स्वयं उस प्रेम भावना का अनुभव हुआ जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। उनका दिव्य प्रेम संकीर्तन देखकर सब लोग प्रभावित हो गए और सब लोग शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। फिर महाप्रभु चैतन्य ने कुछ समय यहाँ पर निवास किया, उस समय यहाँ के शुद्ध ब्राह्मणों के मुख से उन्होंने श्रवण किया। भगवान भी जब उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, जगह जगह जाकर एक तो कीर्तन किया, वहाँ के पवित्र कुंडों में स्नान किया और वहाँ के साधुओं के साथ बैठकर सत्संग किया, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है यह सब करने की, लेकिन भगवान भी हमारे लिए एक आदर्श बनाते हैं। भगवान होकर भी प्रभु रामचंद्र ने वनवास में अगस्त्य मुनि और गौतम ऋषि के कई ऋषियों के साथ में संग सत्संग किया था पूरे 14 वर्ष 13 वर्ष तक, और आखिरी साल में ये सब सीता की खोज में बाद में फिर मेहनत किया था, लेकिन 13 वर्ष तक उन्होंने वनवास में केवल साधुओं का संग किया था भगवान स्वयं होते हुए भी। तो जब शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा वो सत्संग कर रहे थे तो शुद्ध ब्राह्मण यहाँ के कूर्म पुराण का पठन कर रहे थे, और उस कूर्म पुराण के उस अध्याय में रावण ने सीता का हरण कैसे किया उसका वर्णन हो रहा था। तो प्रभु ने बड़े ध्यान से ब्राह्मणों के संग में बैठकर कूर्म पुराण का वो हिस्सा पूरा सुना, और फिर उन्होंने उस कूर्म पुराण को कॉपी किया। उस समय जेरॉक्स मशीन नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कॉपी करने का मतलब क्या है, हाथ से उतारना। चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण को हाथ से उतारा, और वो कॉपी लेकर वो जब मदुराई गए तो वहाँ पर उनका मुलाकात हुआ रामदास विप्र से, और रामदास विप्र जो उसकी कहानी आपको मदुराई बताएंगे आपको, रामदास विप्र भगवान के बड़े भावुक भक्त थे, इतने श्रेष्ठ भक्त थे कि उनको उन्होंने ये कूर्म पुराण दिया और कहा कि इसको अच्छी तरह प्रकाशित करना। तो ये लीला चैतन्य महाप्रभु ने की। रामेश्वर 4 धाम में से एक है, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वर। ये जब 4 धाम की यात्रा होती है तो आदमी फिर मोक्ष के लिए योग्य बन जाता है। हिमालय से, बद्रीनाथ से गंगा जी का जल लेकर रामेश्वर को चढ़ाना होता है, तब आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। एक 4 धाम तो ऊपर ही है, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेकिन वो मिलकर एक माना गया है। और इसमें विशेषता यह है कि ये तीनों जो चारों धाम जो है, इसमें 3 धाम कृष्ण के हैं, बद्रीनाथ विष्णु का है, द्वारका द्वारकाधीश कृष्ण का है, जगन्नाथ जगन्नाथ जी विष्णु स्वयं हैं, और एक ही धाम शिव जी का है। और शिव जी पर भगवान कितना प्रेम करते हैं कि जताने के लिए इसको भी धाम का दर्जा दे दिया है। शिव जी जो है भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मा जी जो वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये शिव जी। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र 4 कुमार इन्होंने प्रजा उत्पत्ति करने के लिए मना कर दिया, नारद मुनि के संग में आकर उन्होंने ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया, तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे पहले नारद मुनि खुद गृहस्थ नहीं बने, हाँ, फिर नव योगेंद्र को भी सन्यासी बना दिया, 4 कुमार उनको भी सन्यासी बनाने का प्लान किया, तो बड़ा क्रोध हुआ उनको। जब उनको क्रोध हुआ तो उनके भ्रुकुटी मध्य से, उनके भवों के बीच में जगह जो इसको कहते हैं भ्रुकुटी मध्य, उसमें से 11 रुद्र निकले। उसके पहले रुद्र है शंकर भगवान और 11वें रुद्र है हनुमान जी। तो हनुमान भी शिव जी के अंश हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं, उनका जन्म उनके शरीर से हुआ है, फिर भी वो महादेव, शिव जी को महादेव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, पिता पुत्र की पूजा करते हैं, पुत्र के लिए अनुष्ठान करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है इनमें और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, जैसे दूध और दही है उसमें क्या अंतर है, गुण अलग है उसका, लेकिन दूध और दही एक ही है। क्षीरम दधि विकार विशेष योगात, इसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। खाली ब्रह्मा जी सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं, अभी ब्रह्मा जी रजगुण के अधिष्ठाता हैं, विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं और शंकर जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। ये विनाश करते हैं, हाँ, जब भी विनाश का समय आता है तांडव नृत्य करते हैं और विनाश करते हैं, लेकिन साथ साथ ये महादेव हैं, कलाओं के राजा भी हैं, हाँ, कलाओं के देवता हैं, नटराज है स्वयं, अनेक कलाओं की साधना इनकी कृपा से होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के अनन्य भक्त हैं ये, केवल ऐसे ही एक ही देवता हैं जिनको और उनकी पत्नी को ब्रज में भगवान ने चिरंतन निवास दिया है, बाकी सारे देवता आते हैं और जाते हैं, ब्रज में उनको रहने का मौका नहीं मिलता है। अपने निजी धाम, निज गौलोक धाम का जो प्रकटीकरण पृथ्वी पर हुआ है ब्रज के रूप में, उस ब्रज में शंकर भगवान को ही केवल रहने का परमिशन भगवान ने दिया है। वहाँ पर गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, हाँ, चक्रेश्वर महादेव, ब्रजेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, ऐसे अलग अलग रूपों में वहाँ पर निवास करते हैं। उनकी सेवा क्या है, धाम की रक्षा करना, धाम की पवित्रता धाम का महात्म्य इसकी रक्षा करना उनका कार्य है और धाम पर रहकर उनको करने का भगवान ने मौका दिया है। तो इनका भगवान पर बड़ा प्रेम है। भगवान की ऐसी कई लीलाएं हैं, राम लीला में है, कृष्ण लीला में है, गौरांग लीला में है और नरसिंह, हर लीला में उनका कुछ ना कुछ सेवा है, ऐसी उनकी विशेष स्थिति है। तो उसी प्रेम को जताने के लिए भगवान प्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान जो है अपने भक्त की यहाँ पर पूजा करते हैं एक भक्त बनकर। लेकिन शंकर भगवान मानते नहीं कि अच्छा आज से भगवान बन गया मैं, तो प्रभु ने मेरा सेवा किया मेरे सेवक बन गए, ऐसा नहीं मानते हो। जैसे अर्जुन के भगवान रथी बन गए, सारथी बन गए, इसका मतलब अर्जुन भगवान बन गया क्या? ये भगवान का महानता है कि भगवान होने पर भी अपने भक्त की वो पूजा करते हैं। मत भक्ता पूजा व्याधिका, वो कहते हैं मेरी पूजा करने के बजाय आप मेरे भक्त की पूजा करोगे तो मुझे अधिक प्रसन्नता मिलती है उससे। इसलिए अगर गुरु महाराज और भगवान आपको साथ में मिलेंगे तो सबसे पहले हम दंडवत किसको करेंगे? गुरु महाराज को करेंगे, क्योंकि भगवान की पहचान उन्होंने कराई है। भक्त वो व्यक्ति होती है जो भगवान की पहचान कराते हैं हमसे। भगवान के हमको क्या मालूम है, हम तो भक्तों को पहचानते हैं और वो भक्त भगवान को पहचानते हैं, इसलिए भगवान के परिचय हमको करा देते हैं। इसलिए अगर भक्त और भगवान सामने आएंगे तो सबसे महान भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन भक्त जो है उनको वो समझते नहीं कि मैं भगवान से महान हूँ, हम समझते हैं कि वो भगवान से महान है, लेकिन भक्त जो होता है वो खुद को भगवान का सेवक ही मानता है। उस तरह से शंकर भगवान ने, जब भगवान ने उनका लिंग स्थापन किया और उनकी पूजा की तो शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान का धन्यवाद किया उन्होंने कि आप इतने महान हैं मेरे प्रभु कि मेरी भी आपने पूजा कर ली और मैं, आपने मेरी पूजा की है देवता मानकर, तो मैं भी देवता बनकर आपको वरदान भी देता हूँ कि जो भी इस रामेश्वर यहाँ पर आकर आपने पूजित किया हुआ लिंग की पूजा करेगा वो सभी पापों से, पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। शंकर भगवान ने यहाँ पर वरदान दिया है। तो इस तरह से हमने आपको रामेश्वर का महात्म्य बताया और धनुष कोटि का महात्म्य बताया अलग अलग कथाओं के माध्यम से। तो कल सवेरे हम लोग यहाँ से 6 से 8 अग्नि तीर्थ में पहले स्नान करेंगे, समुद्र तीर्थ में, फिर मंदिर में जाएंगे, वहाँ के 22 तीर्थों में स्नान करेंगे, फिर आकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बस में बैठकर धनुष कोटि जाएंगे। वहाँ पर इतना सुंदर स्थान है वो, लेकिन कुछ समय जब भर्ती आती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ज्वार ना, हाई टाइड, तो वो जगह नष्ट हो जाती है और समुद्र उसको घेर लेता है। और जब ओहोटी होती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, लो टाइड, तो वहाँ जमीन पैदा होती है कुछ समय के लिए, भाटा, उसी समय हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ 3 समुद्र का संगम है, हिंदी महासागर, बंगाल का उपसागर और अरबी महासागर, लेकिन रामायण के अनुसार 2 महासागर का वहाँ पर मिलन है। हाँ, एक महोदधि और एक क्या नाम था, भूल गया मैं, कल बताऊँगा आपको, वो संस्कृत के नाम है, शास्त्रों के नाम है, उन दोनों का वहाँ मिलन है। और एक तरफ से बहुत उछलता हुआ समुद्र है, एक तरफ से शांत समुद्र है। तो शास्त्र में लिखा है कि वो समुद्र मेल है और ये फीमेल है, ये पुरुष है और ये स्त्री है। और वहाँ पर प्रभु रामचंद्र, सीता, विभीषण, गरुड़, वायु, अग्नि, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे सभी महात्माओं ने, ऋषियों ने वहाँ स्नान किया है। और हमारी यात्रा में नंदगांव के गोसाई ने भी स्नान किया है, गुरुदेव ने भी स्नान किया है, सभी संतों ने वहाँ पर स्नान किया है, अगस्त्य मुनि ने स्नान किया है। तो वहाँ पर हमको कल स्नान करने का मौका मिलने वाला है, लेकिन सावधान रहना इतना ही है कि जल को देखते हुए वहाँ पर आपको उतरना है। हमने वो टाइम टेबल निकाल के आपको ले गए हैं, समझो हमारा टाइम टेबल गलत निकलता है और वहाँ पर ज्वार आता है तो आपको दूर से आचमन करके भाग जाना है, क्योंकि बीच में कलेक्टर ने वहाँ पर आदेश निकाल कर स्नान कराना ही बंद कर दिया था। तो अभी शायद कल हमको स्नान करने का मौका मिलेगा, हमने आज महात्मा सुन लिया है, जरूर प्रेरणा मिली होगी आपको स्नान करने की, तो आप प्रार्थना करना कि धनुष कोटि में आपको स्नान करने का भाग्य मिले, क्योंकि अनंत वरदान वहाँ पर अनेक लोगों ने दे दिए हैं अनेक कथाओं के माध्यम से। तो इतनी दूर आप आए हैं, चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी से यहाँ पर धनुष कोटि में स्नान करने के लिए आए थे, तो आपको भी वो दिव्य स्थान, हम लोग तुच्छ हैं, हम लोग इतने महान लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी संतों के कदमों पर कदम रखते हुए, भगवान के कदमों पर कदम रखते हुए, उनके आशीर्वचन के अनुसार हम भी कल वहाँ पर एक प्रार्थना करते हैं कि हमको भी स्नान करने का मौका मिले। तो आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि आपका कल का 24 तीर्थों का स्नान सफल हो जाए। हरे कृष्ण। आपको मन में ध्यान एक ही रखना है, जब आपको आप अग्नितीर्थ में उतरेंगे तो आपको खुद स्नान करना है, लेकिन 22 तीर्थों में जाएंगे तो आप पर कुएं का जल निकाल कर डाला जाएगा बाल्टी के रूप में, ठीक है। जब भी आपके ऊपर जल डाला जाएगा अंदर मंदिर के और आप स्नान करेंगे अग्नि तीर्थ में बाद में धनुषकोटि में, केवल भगवान की भक्ति मांगना और कुछ नहीं मांगना। मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, पोजीशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, मुक्ति चाहिए, हाँ स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग लोगों का आनंद लेना है, अप्सराओं का, नंदनवन का, ये कुछ भी नहीं मांगना। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, ना मुझे स्तुति चाहिए, ना मुझे गौरव चाहिए, ना मुझे अच्छा पद चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मेरी पूजा प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ना स्त्रियों का आनंद चाहिए मुझे, ना धन का आनंद चाहिए, सुंदरता का आनंद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तोई, जन्म जन्मांतर तक, मतलब क्या मोक्ष भी नहीं चाहिए। बहुत जन्म कब होते हैं, जब मोक्ष नहीं मिलता तो जन्म होते ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मेरे कई जन्म होंगे, उस हर जन्म में भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वई, आपकी अहेतुकी निरपेक्ष स्वार्थ रहित भक्ति प्राप्त होती रहे, यही मात्री मेरी एकमात्र तमन्ना है। इस भावना से आप लोग कल इस 24 तीर्थों का स्नान करना। गलती से भी कर्मकांड का फल, सिद्धि का फल, मोक्ष का फल की याचना मत करना, यही बोलना न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि, विद वन प्रेयर यू गो टुमारो, तब आपको आपके रास्ते भटकेंगे नहीं, आपका रास्ता सीधे गौलोक वृंदावन तक जाएगा, अब भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति आपको मिलेगी। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जने परिपासते, जो मेरी अनन्य भक्ति करेगा उसका योगक्षेम मैं संभालूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम, विश्वास रखना भगवान की इस बात पर। भगवान ने कहा है अगर आप मेरी अनन्य भक्ति करते हो, मुझे छोड़कर कोई चीज़ को चाहते नहीं हो, तो मैं आपके पास जो है उसको बचा के रखूँगा, जो आपके पास नहीं है वो दूंगा। इसलिए डोंट टेक टेंशन व्हाट विल हैपन टू योर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्या होगा आपकी ज़रूरतों का, चिंता मत करना। जो हाथी को खिलाते हैं, चींटी को खिलाते हैं, देवताओं को भी खिलाते हैं, आपको भी खिलाते हैं, सबको मेंटेन करते हो, इसलिए उनको स्पेशल एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा दो, कपड़े दो, खाने पीने की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो, डोंट वरी अबाउट इट। जिसने आपको जन्म दिया है इस दुनिया में उसकी वो जिम्मेदारी है, वो बड़ी अच्छी तरह निभाते हैं उसको। मांगना है तो एक ही चीज़ मांगना है भगवान से, हाउ कैन आई सर्व यू माई लॉर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन द गिवन मोमेंट ऑफ लाइफ, आज की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ तरीके से मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू कैन आस्क द लॉर्ड, एक ही प्रश्न आप ऐसे ही केवल एक प्रश्न भगवान से पूछ सकते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे आपकी सेवा चाहिए बस। इसी भावना से कल 24 तीर्थों में आप स्नान करना। श्री कृष्ण भगवान की, रामेश्वर महादेव की, धनुषकोटि धाम की, अग्नि तीर्थ की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्री गौरांग महाप्रभु की, युग धर्म हरिदाम संकीर्तन की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।